नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। इस साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में 12वीं फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और उस फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी को क्रिटिक्स अवार्ड मिला। ये फिल्म 2024 की शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी, जिसमें कई भारतीय फिल्में, वेब शो, अभिनेता और निर्देशक शामिल हुए। इस फेस्टिवल में शामिल होने विक्रांत मैसी भी पिछले हफ्ते मेलबर्न पहुंचे थे और SBS हिंदी टीम ने उनके साथ एक खास बातचीत की। इस अंश में सुनिए उन्होंने अपनी फिल्म और अपने काम को लेकर हमसे क्या कहा।
वेलकम टू SBS हिंदी प्रोग्राम विक्रांत।
हाय हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू।
तो विक्रांत, ये आपका पहला ट्रिप है और यहाँ पर जो मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें आपकी फिल्म को दो अवार्ड्स मिले हैं
जी।
एक तो आपकी फिल्म को बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला है आपको एज अ परफॉर्मर, और आपकी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, बट बेस्ट एक्टर नहीं मिल पाया। तो कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट रही?
नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आई फील जो बेस्ट परफॉर्मर क्रिटिक्स है वो मेरे लिए बेस्ट एक्टर ही है, और फिल्म को भी अवार्ड मिला है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी विद इट। कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि दैट वुड बी रियली अनफेयर, बिकॉज कार्तिक इज ऑल्सो डन अ फिनोमिनल जॉब इन चंदू चैंपियन
जी।
कबीर सर को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, ही वन द बेस्ट डायरेक्टर, सो आई थिंक बोथ चंदू चैंपियन एंड 12th फेल थरली डिजर्व द एक्लेड्स दैट दे गॉट, एंड इट्स अ विन विन फॉर इंडियन सिनेमा। एक्चुअली वी आर हियर टू सेलिब्रेट इंडियन सिनेमा, तो हम सब रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडियन सिनेमा के, एंड यू नो, तो ऐसी कोई कंप्लेन्स नहीं है, कोई निराशा नहीं है, इनफैक्ट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट।
विक्रांत, अच्छे सिनेमा बनाने के लिए सुपरस्टार्स की ज़रूरत होती है, आपका क्या मानना है?
वाओ, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आई होल्ड दिस, डोंट वरी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्चुअली। आई होप आई कैन समराइज इट ब्रीफली। देखिए, अच्छा सिनेमा बनाने के लिए एक अच्छी कहानी की ज़रूरत होती है सबसे पहले, लेकिन उस अच्छी कहानी को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा स्टार आपको लगता है, पर क्या एक अच्छी फिल्म सिर्फ एक अच्छा स्टार बना सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। सो बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, बट फॉर मी द सोल लाइज विद इन द स्क्रिप्ट। अगर आपकी अच्छी कहानी है
जी,
अगर आपने अच्छे इंटेंट से बनाई है, तो हाफ योर जॉब इज डन।
आपको लगता है 12th फेल ने वो प्रूव कर दिया है कि सुपरस्टार की जरूरत नहीं है?
आई काइंड ऑफ अग्री विद यू ऑन दैट। 12th फेल वाज अ फिल्म जिसको हमने बहुत दिल से बनाया था, बहुत ईमानदारी से बनाया था, और विधु विनोद चोपड़ा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका जो राइट एट द आउटसेट एक अप्रोच था कि इस फिल्म को मैं जिस ईमानदारी की बात मैं अपनी कहानी में कह रहा हूँ, मैं उसी ईमानदारी के साथ इसे बनाना चाहता हूँ। एंड एज आई सेड, इंटेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचता है। सो यू नो, एक सुपरस्टार की ज़रूरत, जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरी होता है एक सुपरस्टार होना, लेकिन क्या वो इम्पेरेटिव है, मुझे नहीं लगता। आई थिंक एक अच्छी कहानी ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं, तो आपके लिए नॉन निगोशिएबल चीज़ें कौन सी होती हैं? ये होना चाहिए स्क्रिप्ट में, तब मैं ये फिल्म
आई थिंक द पर्पस ऑफ द स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं, सबके अलग अलग मोटिव्स और एम्बिशंस होते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक्टर्स होते हैं, एक एवरेज फिल्म यूनिट में लगभग 200 से ज्यादा लोग होते हैं
जी,
एंड ऑल ऑफ अस कम टुगेदर टू मेक अ फिल्म विच हैज अ कॉमन गोल। अब मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल सबसे ज़्यादा वो चीज़ है जिसे इंटेंट कहते हैं, और वो गलत नहीं है। यू नो, बहुत सारे लोग पैसा बनाने के लिए फिल्म करते हैं, पैसा बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं, या यू नो, मुझे लगता है कि पैसा इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज़ सब्सटैंशियल एंड वर्थ वाइल। अगर मुझे कल को कोई फिल्म ऑफर करता है कि यू नो, हमारी ये नीयत है, हम जैसे 12th फेल की अगर हम बात करें, अगर कल को मेरे प्रोड्यूसर की जो यू नो विनोद चोपड़ा की अगर ये एस्पिरेशन होती कि ये फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा बनाए, ये फिल्म को हम कोई भी गिमिक करके मार्केटिंग में बाय हुक और बाय क्रुक हम इससे सबसे ज़्यादा पैसे लोगों से ऐंठ लें, तो वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल होता, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। द आइडिया वॉज टू क्रिएट समथिंग विच हैज़ एन आर्काइवल वैल्यू, सो इंटेंट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी.
तो जी जब आपने आप अभी तक आपने विद्यु विनोद चोपड़ा के साथ काम किया है, राजू हिरानी के साथ आप काम करने वाले हैं,
जी.
तो ऐसा कोई डायरेक्टर जो आपका यू नो जिसके साथ आप काम करने वाले, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपके जहन में हो जो आप करना चाहते हैं?
जी बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कबीर खान के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं करण जौहर के साथ करना चाहता हूँ. यू नो दीज आर फिनोमिनल फिल्म मेकर्स हु हैव बीन यू नो चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा. साउथ के भी बहुत से फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. या एंड यू नो ड्रीम रोल्स हैं, ड्रीम डायरेक्टर्स हैं, ड्रीम प्रोड्यूसर्स राइटर्स भी हैं. तो अभी तो मेरा करियर अभी शुरू हुआ है एंड यू नो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज इट कम्स, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू ड्रीम.
तो विद्यु विनोद चोपड़ा के साथ जो काम, जब आप काम कर रहे थे और जब अभी आप हिरानी के साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है?
ये बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं.
हाँ.
सरदर्दी ये है, मैं सरदर्दी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा चैलेंज जो है, विच कैन गिव यू स्लीपलेस नाइट्स. और वो स्लीपलेस नाइट्स की वजह से शायद आपको सरदर्दी हो कि ये बहुत ही मेहनती लोग हैं. ये इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी कंप्लेसेंट नहीं है. बाहर से आपको एक अंदेशा होता है कि ये इतने सक्सेसफुल हैं, इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, तो बड़े कंप्लेसेंट होंगे. पर अगर आप इनको काम करते हुए देखेंगे तो एक 16-18 साल के लड़के को भी शर्म आ जाए. तो ये बहुत मेहनत कराते हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, ईमानदारी से काम करते हैं. इन्हें वैल्यू है, जो पोजीशन पे आज ये हैं, ये उसकी बहुत वैल्यू करते हैं. ये चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते हैं एंड दे पुश यू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू योरसेल्फ. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू सॉर्ट ऑफ मैचअप टू देयर एनर्जी, टू मैचअप टू देयर इंटेंट, टू मैचअप टू देयर इंटेंसिटी एट टाइम्स. बट यू नो इट काइंड ऑफ सूट्स मी. अगर आप जैसे आपने कहा भी कि ट्वेल्थ फेल से एक नई शुरुआत मिली मेरे करियर को, वो शायद इसलिए थी क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा इज समवन जिनके साथ यू नो आई जस्ट फिट इन लाइक अ हैंड इन ग्लव. मुझे शायद ऐसे एक डायरेक्टर की ज़रूरत थी मेरे जीवन में, जो मुझे यू नो हु वुड पुश मी अगेंस्ट द वॉल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. एंड द सेम अप्लाइज टू राजू सर. यू नो ही एंड आई आर डूइंग अ मिनी सीरीज फॉर डिज्नी हॉटस्टार. दो ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग इट, ही इज रिटन द शो, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो एंड ही इज थरली इन्वॉल्व and he wants to give the audiences an experience, a rare experience, an enjoyable experience worth their time and money, and for which I really have to pull up my socks and give out my best too.
तो ऐसा कोई सीन है जिस जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो 12th फिल्म में?
12th फिल्म में तो पूरी फिल्म में मेहनत करनी पड़ी एक्चुअली अगर आप देखें, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस थे उस फिल्म के दौरान. सबसे पहले टू लुक दैट एज, टू लुक लाइक एन 18-19 ईयर ओल्ड बॉय एंड देन टू हैव दैट एज ट्रैजेक्टरी विच गोज अप अंटिल 28-29. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था. यू नो मैं गांव से नहीं हूँ, मैं शहरी लड़का रहा हूँ, तो गांव के डायनामिक्स और वैल्यू सिस्टम को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था. अगर ब्रीफली मैं कहूँ तो जो आटा चक्की का सीक्वेंस था वो एक बहुत बहुत चैलेंजिंग सीक्वेंस था मेरे लिए. Because I was also given the permission by Vinod sir to design my own makeup during that Aata Chakki sequence.
Actually, आप बोल रहे हैं तो मुझे goosebumps हो रहे हैं उस scene याद करके, because वो उसका best scene था film का.
Thank you जी, thank you so much. Yeah, so I mean the entire film was emotionally very challenging actually. फिजिकली तो था ही, बट देन फिजिकली यू नो यू हैव योर टीम हु लुक्स आफ्टर यू. एक खाना बनाने वाला होता है, एक परोसने वाला होता है, यू नो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे. बट जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कैमरे के सामने आपको एक्शन और कट के बीच में करना है, वो बहुत ही एक लोनली जर्नी होती है एंड इट इज़ यू हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर दैट. तो वो बहुत चैलेंजिंग, पूरी फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी. एंड ऑल्सो बिकॉज वो जो फिल्म थी वो एक किताब पर बेस्ड थी. वो किताब ऑलरेडी अपने आप में नताशा जी इतनी सक्सेसफुल रही है, इट ऑलमोस्ट हैज़ अ कल्ट फॉलोइंग इन इंडिया. इसीलिए उस किताब को हमने सोचा कि ये फिल्म बननी चाहिए. एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में वो एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का. तो जब आप एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो हर घर की कहानी हो, you really have to sort of give your best shot every time. So it was a very challenging film, but you know, now with the advantage of hindsight, when we look back, ये लगभग एक साल हो गया इस फिल्म को आए हुए और आज भी लोग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है।
आखिरी सवाल, मुझे कहा जा रहा है कि wind up, but आखिरी सवाल, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या कर रहे होते?
मैं बहुत सोचता हूँ एक्चुअली इसके बारे में नताशा जी, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद शायद पब्लिक सर्विसेज में होता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक्टिंग करके भी मैं जो कहानियाँ कह रहा हूँ या जो कहना चाहता हूँ या जो मेरा इंटेंट है वो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस का ही है। आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल, आई वॉन्ट टू रिप्रजेंट द कॉमन मैन थ्रू माई स्टोरीज, थ्रू माई फिल्म। तो मुझे लगता है अगर एक्टर नहीं होता तो शायद पब्लिक सर्विस में होता, जनता की सेवा कर रहा होता।
धन्यवाद,
थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।